نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم تفہیم و سنہ سیریز کی بک نمبر 5 کتاب الجنائز اردو میں جس کا نام جنازے کے مسائل اور انگلش میں دا بک آف فیونرلز ہے اس کو شروع کریں گے. پڑھنے کا انداز تھوڑا سا ہمارا مختلف ہوگا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس ٹاپک سے فائدہ اٹھائیں گے. اور کتاب یہ ایک سیریز ہے اقبال کیلانی صاحب کی, تو اسی سیریز کا ایک حصہ ہے. لیکن ہم صرف اس بک کو نہیں پڑھیں گے, بک ایک ٹول کے طور پہ یوز ہوگی. بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ ہم یہ جو سیریز شروع کریں گے کتاب الجنائز, اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت ہمیں کس طرح گائیڈ کرتے ہیں. نمبر ایک کہ انسان صحت مند تو رہتا ہے تو بیماری کیوں آتی ہے. دوسرا ٹاپک ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی بیمار ہو تو وہ خود کیا کرے, اور جب دوسرے اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو وہ کیا کریں. ٹھیک ہے جی, دوسری چیز دیکھیں گے. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیماریوں میں کیا کریں شکوے کرنے کے سوا. عموماً ہم شکوے کرتے ہیں تو شکوے نہیں کرنے. پھر اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا موت اور میت کے مسائل. جب ہمارے سامنے کسی کے اوپر ایسے آثار شروع ہو جائیں تو اس وقت کیا کرنے. پھر اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا تعزیت کے مسائل, کہ جیسے کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کے گھر جاتے ہیں تو کیا کریں. عموماً ہم ایسے وقت میں کہتے ہیں جی ہم افسوس کے لیے جا رہے ہیں. کچھ کلچر ہیں جس میں کہتے ہیں پرسے کے لیے جا رہے ہیں, اور بعض دفعہ ہم اس میں بہت کچھ ایسے ایسے کام کر لیتے ہیں. اس سے قرآن و سنت کے ہم گائیڈ لائن لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا غسل میت کے مسائل, کہ میت کو غسل کیسے دے. میں بھی آپ سب سے پوچھوں کہ کیا اس وقت اگر ہم میں سے کسی کو ضرورت پڑ جائے, اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے میری ہی جان چلی جائے, تو کیا آپ سب اس قابل ہیں کہ آپ بغیر کسی کی رہنمائی کے مجھے صحیح طریقے سے غسل دے سکے. میں نے تو عموماً دیکھا ہے کہ ہر شہر اور ہر علاقے میں ایک دو لوگ مشہور ہوتے ہیں, پھر ایسے وقت میں لوگ ان کو ڈھونڈنے لگتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اس کورس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ دوسروں کو اس سلسلے میں مدد کر سکے. پھر اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا کفن کے مسائل, کہ عورت یا مرد جب ان کی ڈیتھ ہو جائے غسل کے بعد ان کو کفن کیسے دیا جائے, کفن میں کیا کچھ ہوتا ہے, کیا طریقے ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا جنازے کے مسائل. گو کہ یہ مردوں سے متعلق ہے لیکن ہم عورتیں خاص طور پہ جب ہمیں نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ملے تو ہمیں پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج اور عمرے پہ لے جائے. وہاں تو ہر نماز میں نماز جنازہ ہوتی ہے, اور میں نے وہاں دیکھا ہے کہ عورتیں یا تو بیٹھی رہتی ہیں, اور بعض پوچھ رہی ہوتے ہیں کیا پڑھنا ہے, ہم نے تو کبھی پڑھی نہیں ہے نا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم پورا نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کے مسائل دیکھیں گے. پھر اس کے بعد تدفین کے مسائل, دفن کرنے کے وقت کیا کیا جاتا ہے کیسے. ہم خواتین کو اس کی اکثر نوبت نہیں آتی کہ دیکھیں آنکھوں سے, مر جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ وہاں تک پہنچتے کہ نہیں. بالکل آپ سمجھ لیں کہ اس کورس کے بعد آپ اس قابل ہوں گی کہ ان ساری چیزوں کے اندر سیلف سفیشینٹ ہوتے ہوئے کام کریں, اور پھر ہم کوشش بھی کریں گے کہ اپنے لیے یہ ساری چیزیں ارینج کر کے رکھیں. جیسے کفن کی بات ہے تو میں ایسے کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے کفن خرید کے رکھے ہوئے. ایک سسٹر کی بات یاد آ گئی کہ وہ کہتی کہ جب اپنے ان کے ابو کی ڈیتھ ہوئی تو کہتی کہ اس کے بعد پھر میں نے اپنا اور اپنی امی کا جو بھی حیات ہے اور بہن, تو میں نے ان کے کفن بھی خرید کے رکھ لی ہیں, کہ آج مجھے یقین آ گیا ہے کہ موت ہے. اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنی وارڈروب میں رکھا ہوا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ زندگی کا نقطۂ نظر بدل جاتا ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے آج سے ہی آپ نے نیت کرنی ہے کہ ہم اس کو انٹریکٹیو رکھتے ہوئے, اس کے اندر سے اپنے لیے رہنمائی لیتے ہوئے یہ سب کچھ کریں گے. اور کوئی ایسا وقت جو خدا نہ خاصہ کسی کے ساتھ ہو تو کیوس نہ برپا ہو جائے, بلکہ اس وقت ہم اپنے ہوش کو قائم رکھیں. پھر اسی طرح جو ہمارا اگلا ٹاپک ہوگا وہ زیارت قبور کے مسائل ہے. کبھی قبرستان جائیں تو کیا کرنا ہے, کیا عورتیں جا سکتی ہیں کہ نہیں, جائیں تو کیسے جائیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پوچھتے ہی رہتے ہیں. तो आप जब इल्म लेंगे तो इंशाल्लाह पूछने की नौबत नहीं आएगी। और एक फिर आखिरी टॉपिक जिसके बाद फिर हम इस टॉपिक को रैप अप करेंगे, वो है ईसाले सवाब के मसाइल क्या है, कि मरने वालों को क्या हम फ़ायदा दे सकते हैं। कितने सवालात लोगों के जहनों में होते हैं ना, क्या हम कुरान हानि कर सकते हैं कि नहीं, क्या मरने वालों को ये कर सकते हैं, क्या करें क्या ना करें। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह स्टेप्स के साथ चलेंगी। मैं आप सब साथियों को इस चीज़ के लिए आज से ही कहूँगी कि बग़ैर मिस किए इसको एंड तक सुनिए। तो अब हम शुरू करेंगे। इस टॉपिक से फ़ायदा लेने का तरीका क्या होता है, इसमें मैं आपको ये भी थोड़ी सी गाइडलाइन दे दूँ। आप देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ आप सुनते हैं ना, और सुनने के साथ साथ आपके हाथ चलते जाएं, वो बातें जो आपको याद रखनी होती हैं उसको साथ लिखते जाएं, ठीक है। जब हम गौर से सुन के लिख लेते हैं ना, तो वो किसी किताब को फॉलो करने से भी ज़्यादा फ़ायदा देती है चीज़। ये मैंने इस तरह आजमाया है कि जैसे ग्रामर होती है ना, ग्रामर की 10 किताबें भी आपके पास हों, लेकिन जो आपके अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं ना, उसके साथ आप बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अगर इस जुमले पे हम गौर करें तो हम सब को लफ्ज़ नफ्स के नीचे अपना नाम लिखना चाहिए। लिखिए, आज मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, ताकि मैं अपनी मौत की तैयारी करूँ। हकीकत यह है कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी पैदाइश और वफ़ात, यानी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, जो हमारे यहाँ एक ख़ास टिपिकल सेंस में बोला जाता है, डेट ऑफ लफ्ज़ को निकाल दीजिए। बस दफ़ा हम डेट में उलझ जाते हैं और उसके नाते से हम बाकी चीज़ों को पीछे डालते हैं, लेकिन ये दो बहुत अहम मौके होते हैं। सूरत मुल्क में बिल्कुल पहली आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में ज़मीन व आसमान की बादशाहत है, जिसने पैदा किया ज़िंदगी और मौत को, ताकि वो देखे कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है। तो अगर आप देखें कि यह लफ्ज़ खलक़ल मौत वल हयात, तो ज़िंदगी और मौत ये दो अहम नुक्ते हैं जो एक इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरी बात नोट कीजिएगा, और वो क्या है कि हम कहते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है और कुरान पाक में हर मौजू पे रहनुमाई मौजूद है, ये भी बात कहते हैं ना। तो इससे क्या पता चलता है कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें पैदा होते हुए बच्चे के साथ क्या करना है इस पे कोई गाइडलाइन ना दियो, और मरते हुए शख्स या मरने वाले के साथ क्या करना है ये ना बताओ। तो हमारा ईमान है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इन सारी बातों पे मुकम्मल तौर पे गाइड किया है। देखा जाए तो हम अमूमन पैदाइश पे खुशियाँ ज़्यादा मनाते हैं, डेट ऑफ बर्थ को बड़े इत्तेफाक से मनाते हैं, लेकिन पैदाइश के मुकाबले में मौत के असरात ज़्यादा गहरे और देर पर होते हैं। इंसानी तबीयत पर खुशी से ज़्यादा गम का असर रहता है। एक बच्चे के पैदा होने की खबर मिली, सोचिए, और साथ ही उसी के बाद फौरन किसी की खानदान में डेथ की खबर मिली, बताइए कि किसका असर हमारी तबीयत पर ज़्यादा होगा, फौत का होगा ना। तो इससे मतलब क्या पता चल गया कि पैदाइश से ज़्यादा मौत का असर है। लेकिन जो सवाल पैदा होता है वो क्या है कि क्या हम जानते हैं कि इस्लाम ने मौत, मौत से पहले बीमारी, बीमारी के साथ उससे अगले पिछले मामलात में क्या गाइडलाइन दी है, हमें इसके बारे में पता है। देखिए, आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजते हुए अल्लाह ताला ने ये कहा था कि आप जन्नत से निकल के ज़मीन पे जाइए, कुल नहबितु मिनहा जमीयन فَإِمَّا يَعْطِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خلاصہ کیا ہے کہ اب آپ دنیا میں جائیں تو میں آپ کے پاس گائیڈ لائن بھیجوں گا، کتابیں آئیں گی، نبی آئیں گے، پھر جو ان کے اوپر عمل کرے گا تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو جھٹلا دے گا تو ان کے ساتھ برا معاملہ ہوگا. تو اس وقت یہ وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ جینے اور مرنے کی ہر وہ چیز جس سے انسان کو واسطہ پڑھنا میں بتاؤں گا. اسی طرح حضرت آدم کے قصے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وعلم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام بتا دیے. تو پتہ کیا چلا کہ مرنے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی بتا دیے گئے. لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج چونکہ ہم مسلمانوں کا مزاج علم والا نہیں رہا، آج ہم نے کتاب کو کتاب ہدایت بنانے سے زیادہ جنتر منتر، دم، تعویذ، پڑھنے کی کتاب، اس کو کسی مرنے والے کے لیے پڑھنے کے لیے کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ موت تو چھوڑ دیجئے، بیمار ہوتے ہی بعض دفعہ ایسی شرکیہ باتیں شروع ہو جاتی ہے، کسی نے جادو کر دیا، کسی کی نظر لگ گئی، پتہ نہیں میں نے کیا کیا. آپ سنیں نا لوگوں کے کمنٹس، تو گویا کہ بے علمی کی وجہ سے انسان ایسے موقعوں پہ غلط باتیں کرتے ہیں. لیکن جب ذرا سوچئے کہ کسی کے گھر میں موت کا سلسلہ ہو، آپ میں اور میں نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی کسی کو مرتے نہیں دیکھا، ہر ایک نے دیکھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا وقت ضرور یاد ہوگا آپ کی زندگی میں. آپ دیکھیے کہ جب گھر میں کوئی بیمار ہو، اور اللہ نہ کرے کسی کو ایسی بیماری ہو جو جان لیوا ہوتی ہے، بعض اوقات ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں کہ اتنا وقت رہ گیا، اتنے مہینے، یہ کوئی غائب نہیں وہ بتاتے، سمٹمز دیکھ کے بتاتے ہیں اور گیجٹس اور مشینیں یوز کر کے بتا دینا کوئی غائب نہیں ہوتا. لیکن اب دیکھیے کہ گھر کے اندر ایک عجیب سائیکلوجیکل کیفیت شروع ہو جاتی ہے نفسیاتی طور پہ. ایک تو تیمارداری کے نام پر آنے والوں کا ہجوم، گھر والے احساس سے ناکامی ہیں، ساری دوائیاں بیکار ہو رہی ہیں، پانی کی طرح پیسہ لگ رہا ہے، تقدیر کے آگے بے بس ہے انسان، پھر اپنے بیوی بچوں گھر والوں جو بھی جا رہا ہے اس سے ہمیشہ کی جدائی کا احساس، اور سب سے بڑھ کے پھر موت کا خوف اور گھبراہٹ. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بندے کے ہوش گم کر دیتی ہیں. ایسے وقت میں اگر انسان وقت سے پہلے تیار نہ ہو ان چیزوں پہ، تو بیلیو می کیسے وقت میں تو دعا بھی نہیں منہ سے نکلتی. ایسا ایکسپیرینس ہوا، ہم کسی جگہ پہ تھے، اچانک کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، تو بعد میں جو ماں تھی وہ کہنے لگی کہ میں اتنی گھبرائی کہ میرے منہ سے تو اس وقت کل بھی نہیں پڑ رہے تھے کہ میں اس بچی پہ کل پڑھ کے پھونک دوں، کچھ کر دوں. حقیقت ہے نا. تو گویا کہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان تمام چیزوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وقت سے پہلے تیاری کریں. گھر میں مہمان آ جائیں اس وقت سمجھ ہی نہیں آتا کیا پڑا ہوا ہے، پہلے سے پتا ہو تو ٹیبل لگا کے رکھ کے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں نا. تو اس وقت کی اپنی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آج ہم سب کو کرنا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. بعض اوقات وہ ہر بندے سے کیا کروں، کوئی کہتا ہے وہاں بابا جی ان سے دم کرا لو ادھر پہنچ جائیں گے، کوئی کہتا ہے ہومیوپیتھی علاج ہے، کوئی کہتا ہے ایلوپیتھی، کوئی ڈاکٹر کوئی امریکہ بھیجو، اس قسم کا ایک کیوس برپا ہو جاتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ ایسے وقت میں شیطان کے ہتھکنڈوں سے بچتے ہوئے بیکار شرکیہ کام، تعویذ، دم، درود اور ایسے کاموں کی بجائے قرآن اور سنت ہمیں کیا کہتا ہے اس کو کرنا. ایک اور خرابی بھی دیکھی گئی کہ ایسے وقت میں عموماً لوگ منتیں مان لیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاؤں گی، ادھر جاؤں گی، ادھر جاؤں گی. لیکن کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی معاملہ آئے تو آپ کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوچ لے. کیا اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی کبھی کو بیمار ہوا تھا؟ ہوا تھا نا. آپ نے کیا کیا تھا؟ اچھا آپ کی زندگی میں بھی کبھی کو ڈیتھ بیڈ پہ تھا نا؟ ہوا تھا. تو وہ کیا تھا؟ اچھا پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں بھی کوئی فوت ہوا تھا نا؟ تو کیسے آپ نے دفن کیا؟ پھر اسی طرح بات کی چیزیں آپ دیکھیں گے ایسے آپ کے سامنے گائیڈ لائن بنے گی کہ جیسے ہم اپنے بڑوں کو کچھ کرتا ہوا دیکھتے تو عموماً ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے نا، اماں ایسے کرتی تھی، نانی ایسے کرتی تھی، دادی ایسے کرتی تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بنا دیں گے تو اس کے ساتھ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ہم وہ کچھ نہیں کریں گے جو خاندانوں میں ہوتا آیا، کیونکہ وہ تو بےچارے بھولے لوگ تھے، سیدھے سادھے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے کبھی کچھ. ہم فوراً سوچیں گے اچھا ہمارے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بزرگ یعنی صحابہ کرام وہ کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا خوبصورت ایک آپ کی زندگی میں رنگ آ جائے گا. اور سب سے بڑی بات ہے پورے گلوب کے لوگ اگر اس بات پہ عمل کریں تو پوری دنیا میں ایک آپ کو ہارمنی دکھے گی. مشرق سے مغرب، ایسٹ سے ویسٹ، نارتھ سے ساؤتھ، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو ان سارے وقتوں پہ لوگ ایک ہی جیسے کام کرتے دکھیں گے. इसके बरक्स आजकल आप देखते हैं कि हमारे कल्चर के हिसाब से रस्में भी फ़र्क है। फिर आप देखिए, चले कोई मरता है उस वक़्त तो जो भांत भांत की बोलियाँ बोलते हैं, मौत के बाद क्या होता है? ताज़ियत के लिए आने। एक तो मरने वाले की जुदाई का गम, रंज और गम, इंसान है, बीवी है तो उसका शौहर चला गया, फिर इसके बाद बच्चे हैं तो उनको होश नहीं है, कभी कभी इतना अचानक ये मामला होता है कि अपसेट है और घर मेहमानों से भरा हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, एक ऐसी सिस्टर थी कि बिल्कुल सडन उनके हस्बैंड की डेथ हुई, किसी सफ़र में थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, ड्राइविंग सीट पे समझे कि एक साइड पे गाड़ी की तो उनको हार्ट अटैक हुआ हुआ था और उसी जगह उनकी जान निकली। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी सडन डेथ होगी। किस्सा मुखसिर के जब उनकी डेड बॉडी आई तो बाद में फिर घर में मेहमानों का वो सिलसिला चले, एक नहीं दो नहीं तो 3 दिन, 10 10 दिन लोग बैठते हैं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो दूसरे तीसरे दिन के बाद इतनी ज़्यादा थी, कहती मेरा दिल करता है ये सब मुझे छोड़ दे जाए, मैं सोचूं, मैं अपने शौहर के बारे में सोचना चाहती हूँ, मैं उनकी यादें देखूं, मैं उनकी चीज़ें देखूं, लेकिन ये इतने काम है और घर मेहमानों से भरा, नाश्तों में इतनी इतनी डबल रोटियां आ रही हैं, अंडे आ रहे हैं, कई हज़ारों का खर्चा सिर्फ एक एक दिन पे हो जाता था उस दौर में भी। तो लिहाजा ऐसे वक्त में भी समझ नहीं आता, और इंसान के जज्बात जो होते हैं वो ख़राब होते हैं, होश गुम हुई है, और ऐसे वक्त में शैतान फिर आके बजाय इसके के जो आए वो मसनून तरीक़ों से मैयत को बख्शिश की दुआ पढ़े, उसके लिए कोई अच्छे कामों की नीयत करें, रोना पीटना, नोहा खानी, कपड़े और बाल नोचना और मातम, और अकेले में बातें करना, और जब घर वाले सामने हो तो उनके सामने बड़ा दुख का इजहार कर देना। बाज़ लोग स्याह कपड़े पहन लेते हैं, बाज़ सफ़ेद पहन लेते हैं, इस तरह फिर कई कई हफ्ते बल्कि 40 40 दिन तक ये काम किए जाते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। अभी इस मुश्किल से फारिग हुए तो अगला मसला क्या आ जाता है? ताज़ियत के बाद इसाले सवाब। जी अब इस मैयत के लिए क्या करें? अब उसके बाद क्या होता है? कभी उसके नाम पे कुछ 11वीं 22वीं 40वीं खाने पकाने, आप देखते हैं ना। तो हम आज इंशाल्लाह इस सीरीज़ के दौरान ही नियत करते हैं कि जो जो चीज़ कुरान और सुन्नत ने की हम ज़रूर करेंगे, और आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें निकलती जाएंगी और आपको और मुझे इससे फ़ायदा होगा। और आखिर आप देखिए कि जो मुझे लगता है कि इसका तरीका ख़त्म होता है वो कहाँ है कि कब्रिस्तानों में जाके, कब्र कच्ची हो पक्की हो, उस पर फूल चढ़े चढ़ाएं ना चढ़ाएं, कैसे हो, और बाज़ दफ़ा अकेली कब्रें बना के ऊपर इतने बड़े बड़े कुब्बे बना दिए जाते हैं और आने वाले दौर में वहाँ शिर्क होता है। आज के दौर में देख लीजिए कि वो नेक बुज़ुर्ग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तौहीद के प्रचार में लगाई, लोगों को हमेशा अल्लाह के बारे में बताते रहे, आज लोगों ने उनकी कब्रों के ऊपर मज़ार बनाए हुए हैं। आपको हैरत होगी, सुबह सिंध में लवारी एक जगह है, वहाँ एक मज़ार है, तो वहाँ हर साल हज होता है, साल के साल हज होता है। आप यानी पूरा उतना ही बड़ा कमरा है, बस काला कपड़ा नहीं डाला हुआ, ये शुक्र है अल्लाह का, ग्रीन सा और ऊपर, और लोग बिल्कुल बाकायदा वैसे ही डोर बने हुए हैं, वैसी खतीम की जगह सब कुछ, और लोग उस पर चक्कर लगाते हैं, और उसके बाद आपको पता है कि फिर बाद में जाके कुर्बानी भी देते हैं। इसी तरह एक तो बड़ा मारूफ है, आपने सुना होगा ना कि पाकिस्तान में एक ऐसी कब्र है जिसके ऊपर उन्होंने बहिश्ती दरवाज़ा बनाया हुआ है, और लोग उस दरवाजे से गुजरने को जन्नत में जाने की दलील मानते हैं, और वहाँ इतना रश हो जाता है उर्स वाले दिन के फिर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है, लोग बहिश्ती दरवाजे से गुजर रहे हैं और वहाँ से गुडंडे पड़ रहे हैं। हालांकि अल्लाह तो जन्नत के लिए कहता है कि वसीक अल्लज़ी नत्तकु इलल जन्नति जुमरा, तो अल्लाह की जन्नत में जाने वालों को तो तिब तुम और सलाम अलैकुम की खुशखबरियाँ, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? जहालत की वजह से हो रहा है। इसी तरह आपको होता है कि एक साहिवाल में भी एक ऐसा यानी दरवाज़ा है, कई जगह पूरे शहरों में आपको देखिए फैला हुआ है, और साल में एक दिन उसके नाम पे खोल के नजराने लंगर और ये कुछ, और बादशाह वजीर जो बड़े छोटे लोग हैं वहाँ पहुँचते हैं। तो सोचने की बात है कि ये सब कुछ करके लोगों ने क्या किया। तो सारी बातों का मकसद क्या था कि इस मौजू पे बात करना और सुनना, इसकी अहमियत आपके जहन में है क्या? अब आप ये सारी बातें सुनने के बाद सोचते हैं कि ये मौजू अहम है और इससे हमें फ़ायदा उठाना है, इंशाल्लाह ताला उठाना है। तो अब हम बाकायदा तरतीब के साथ चलेंगे। ये सारी बातें तो वो थी कि जो हम सबको ज़रूरत पड़नी है, लेकिन आपको पता है कि मौत और बीमारी जो होती है ना, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम बीमारी को मौत समझ लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कई ऐसे हैं जो कई साल से बिस्तरों पे पड़े हैं, अभी जिंदा है, और घर में एकदम अचानक किसी घर वाले को हार्ट अटैक हुआ और दुनिया से चला गया, राइट? ऐसा होता है ना। तो इसके अंदर के मौत का बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन असरात शुरू हो जाते हैं, हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वक्त के साथ साथ फिर इसमें कुछ ना कुछ खराबियां आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला से हम ये दुआ करेंगे कि हमें इन तमाम गलत शिरकिया और इस तरह की चीज़ों से बचाते हुए किस तरह से इन चीज़ों पे लेके जाए कि हमारा जीना और मरना अल्लाह के लिए हो। सूरत अलानाम के आखिर में अल्लाह ताला एक बड़ी प्यारी दुआ नबी सल्लम को सिखाते हैं कि कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए कि मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरी इबादत, यानी हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो हम भी अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे। सिर्फ चंद आयतों के नंबर आपको नोट करवाऊंगी कि जिस जिस जगह शिर्क की बात है, क्योंकि ज्यों ही आप इस मौजू पे किसी दूसरे को बात करेंगे ना, तो लोग जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा होता ना, वो कहते हैं अच्छा जी ये वहाबियों की बातें हैं, ये कोई सुन्नी होगा, ये अहले हदीस होगा, ये कोई सऊदी अरब का आया होगा। तो ना तो हम सुन्नी हैं, ना हम अहले हदीस हैं, ना वहाबी हैं, ना हम सऊदी हैं, ना हम कुछ हैं। हम क्या हैं? हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। सूरत हज में अल्लाह ताला ने हम सबको एक बड़ा खूबसूरत नाम दिया, बिल्कुल आखिरी आयतें हैं सूरत हज की, कि तुम्हारा नाम मैंने मुसलमान रखा। तो ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कल हो सकता है जब आप ये ऑडियोज़ किसी दूसरे को गिफ्ट करें, किसी को रिकमेंड करें, तो वो पूछेगा जी इनका मसलक क्या है, इनकी जमात के, इनका गिरोह के, तो आज आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप देखें ना, मेरे से इतने अहम मौजू सुनने लगे हैं, तो आपको पता तो हो कि मैं कौन हूँ, मेरा मसलक क्या है, मेरा अकीदा क्या है। तो हमारा मसलक क्या है? अल मुस्लिमीन, हम मुसलमान हैं। हमारा वही मसलक है जो अबू बकर का था, उमर का था, उस्मान का, अली का था, यानी कौल अल्लाह व कौल रसूल। इसलिए आप इस पूरी सीरीज़ में देखेंगे कि आपको कुरान की आयतें और नबी सल्लम की हदीसों के कम से कम नंबर ज़रूर बोल दूंगी या उनके नाम बोल दूंगी। कुछ कुछ हदीसें आप मेरे साथ दोहराएंगे भी कि आपको पूरा शरह सदर हो जहाँ बैठ के कि आप जो इल्म लेने लगे हैं वो कुरान और सुन्नत का है। मेरी क्या मजाल है, मेरे उस्तादों की क्या मजाल है, किसी बुजुर्ग की क्या मजाल है? जितना मर्जी कोई दावा करे कि वो कुरान सुन्नत से लेता है, तो क्यों ना डायरेक्ट रिसोर्सेज पे आ जाए। जैसे आप देखिए कि दूध भैंस के थनों से निकलता हुआ कोई लेगा तो उसमें तो शक ही नहीं है खराब है, बाकी आप कहीं दूसरी जगह से ले ठीक भी हो सकता है, उसमें कुछ डाला भी हो सकता है, कुछ निकाला भी हो सकता है। तो चंद नंबर नोट कर लें सिर्फ अभी कि जिस जगह कुरान में शिर्क की बात आई है, और ख़ास तौर पे इस मौजू से रेलेवेंट सूरत माईदा की आयत नंबर 72 है, इन्नहु मै युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मावाहुन नार। जिसने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया, इस पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम कर दी और इसका ठिकाना जहन्नुम है। गोया कि आप कह लें कि जानते या अनजाने में हमने शिर्क किया अगर, और लाइल्म रहे, तो फिर आप देख लीजिए कि शिर्क के ऊपर तो जहन्नुम की वईद है। आयत नंबर सूरत माईदा की 72। दूसरी आयत नोट कीजिएगा, सूरत निसा आयत नंबर 48 है, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा। अल्लाह के यहाँ शिर्क की कोई बख्शिश नहीं, हाँ इसके अलावा वो सब कुछ माफ़ कर सकता है जिसे वो माफ़ करना चाहे। आप देखिए कि शिर्क इतना बड़ा गुना है जो बाकी सारी चीज़ों को डिलीट कर देता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि पांच दफ़ा आप पूरा खाना बना लेते हैं, एक चुटकी बराबर चीज़ खाने में ऐसी डल गई कि जो जहरीली थी, नमक की जगह आपने कास्टिक सोडा डाल दिया, क्या होगा? क्या वो खाने का पतीला खाने के काबिल रहेगा? कोई कहेगा चलो कतरा ही है ना, छिपकली गिर जाए, काकड़ोज गिर जाए, मेरा ख्याल है मक्खी भी गिर जाए तो हम जैसे लोग तो ना खाएं जिनके पास इतना खाना है, हाँ? तो शिर्क भी मक्खी, कॉकरोच और छिपकली और इन सब से कड़वी चीज़ है। एक कतरा शिर्क हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा ना, तो ये नमाजें, तहज्जुदें, तरावियाँ, सदके खैरात सब ज़ाया हो जाएंगे। अगली आयत है सूरत ज़ुमर 65, लाइन अशरक तलयहबतन अमलुका वला तकूनन मिनल खासिरीन। ए नबी, अगर आपने भी शिर्क का इर्तिकाब किया तो आपका सब किया कराया ज़ाया हो जाएगा और आप खसारा पाने वालों में हो जाएंगे। किसको कह रहे हैं अल्लाह ताला? नबी सल्लम को, नबी को भी कह दिया कि अगर आप शिर्क करेंगे तो आपके भी अमल ज़ाया होंगे। गोया कि आप कह सकते हैं कि नबियों के लिए भी यही हुक्म था, बल्कि कुरान पाक की एक आयत है कि जिसमें 18 नबियों के नाम लिए हैं, और अल्लाह ने उसके बाद ये कहा है अगर ये भी शिर्क करते तो मैं इनका सब किया धरा जाया करता। आप कहेंगे ये क्या होता है? सिंपल सी मिसाल से समझ ले तो शायद बात और ही क्लियर हो जाए। देखिए, बीवी शौहर की 10 बातें ना माने, चाय का बना दो ना बनाई, इट्स ओके, खाना ये नहीं वो नहीं, दिन में चलता ही रहता है ना, कभी मान लेते हैं, ज़्यादा मानते हैं, कभी नहीं भी मानते, इट्स फाइन, नॉर्मल है। लेकिन बीवी कहते कि आपके साथ मेरा एक और शौहर भी है, ये शिर्क है। सिंपल सी बात है। और शौहर भी बीवी की 10 बातें ना माने इट्स फाइन, लेकिन कहते बस आपके साथ मैंने गर्लफ्रेंड भी रखी हुई है। शिर्क इज़ जस्ट लाइक मेकिंग पार्टनर्स और एसोसिएशंस विद अल्लाह सुब्हान तआला। तो शिर्क कितनी बड़ी चीज़ है, और आप कहेंगे ये इस टॉपिक में शिर्क का कहाँ ताल्लुक है। आप देखेंगे अल्लाह की गाइडेंस जब हमारे पास नहीं होती ना, तो हम बंदों को बाज़ दफ़ा अल्लाह के मुकाबले पे ले आते हैं। फिर इसी तरह अगला नंबर नोट कीजिए, सूरत शोरा आयत नंबर 213, फ़ला तद उमा अल्लाह इलाह नाखरा फ़तकून मिनल मुअज़्ज़बीन। ए नबी, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद ना बनाएं, वरना आप भी सज़ा पाने वालों में शामिल हो जाएंगे। तो आप देखें मैं और आप क्या हैं, अल्लाह अपने नबी को कह रहे हैं तो फिर इसमें कहाँ शक होगा। और एक आखिरी आयत, हालांकि पूरा कुरान शिर्क की आयतों से भरा हुआ है, लेकिन सिर्फ चंद चूदा चीदा चीज़ें जो आपके मेरे फ़ायदे की हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 113, 113 सूरह तौबा, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन। नबी और अहले ईमान को ये जेबा ही नहीं है, इट डजेंट सूट्स देम, क्या कि वो मुशरिकों के लिए मगफरत की दुआ करें। यानी जो अनाउंस्ड शिर्क पे मर जाता है, नाम नहीं लेने की ज़रूरत, लेकिन कुछ नॉन मुस्लिम ऐसे मरे दुनिया से, आज लोग बड़ी उनकी फ़िक्र करते हैं, मदर टेरेसा किधर जाएगी, लेडी डियाना किधर जाएगी, भाई मुझे और आपको क्या लगे कोई किधर जाएगा, हमें तो अपनी फ़िक्र है कि हम किधर जाएंगे। लेकिन अनाउंस्ड कोई कुफर पे मरता है तो उसके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। शिर्क कोई करे जिंदगी में, इसके लिए आप दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उसको हिदायत दे, लेकिन मरने के बाद उसकी बख्शिश की दुआ नहीं हो सकती। वलौकान उली कुर्बा, अगरचे वो उनके रिश्तेदारी क्यों ना हो, मिम बाद इमा तबय्यन लहुम अन्नहुम असहाबुल जहीम, इसके बाद कि ये पता चल गया कि वो मुशरिक जहन्नुमी थे। तो अब आप देखिए कि नबी की ज़िंदगी में तो पता चल जाता था ना, मेरे और आपके पास तो नहीं था। तो ये तो चंद आयतें थी कुरान की। अब चंद हदीसों के सिर्फ नाम नोट कर लीजिए कि जहाँ ये मौजू आया है। पहली रिवायत जो आपके साथ शेयर करूंगी वो सही बुखारी और मुस्लिम की है, और वो रिवायत जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हो, टॉप क्लास हदीस होती है, आप कह लें सुपर स्टार हदीस है कह लें, तो ऐसी हदीसों को मुत्तफ़िक अलैह कहते हैं, यानी दोनों किताबों में ये मौजूद है, सही बुखारी और मुस्लिम में। और इस हदीस को रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों, साथ हलाक करने वाली चीज़ों से बचो, इजतनिबु सबल मोबिकात, यानी 7 थिंग्स दैट विल किल द पर्सन, उनसे अवॉइड करो। कौन सी वो चीज़ें हैं? साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो इंसान को किल कर देंगी, तो आपने फरमाया सबसे पहली चीज़ अशिरकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ पार्टनर्स बनाना, शिर्क कितना बुरा है। फिर वह सहर, जादू करना कराना। फिर तीसरा वह कत्ल नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाह इल्ला बिलहक, किसी को नाहक कत्ल करना, यानी किलिंग, ये भी कबीरा गुनाहों में से आते हैं, कत्ल किलिंग। फिर वह अक्ल रिबा, सूद का खाना, इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्टिंग लफ्ज़ है इंटरेस्ट, यानी इतनी ब्लैक चीज़, सूद अरबी में ब्लैक को कहते हैं, यानी ब्लैक मनी को इंटरेस्टिंग कर दिया आज हमने ज़ुबान के फ़र्क के साथ, ये कबीरा गुनाहों में से है। फिर उसके बाद वह अक्ल माल अल यतीम, यतीम के माल को नाजायज़ तरीके से खाना। और वह तवल्ला यौम ज़हफ़ी, और मैदान जंग से भागना, यानी इस्लाम का फ़ायदा छोड़कर अपना फ़ायदा करना, ये बहुत बड़ा ख़तरा होता है कि जब लोग इज्तमाईत से निकल कर सिर्फ ज़ाती नेकियों में उलझ जाते हैं। फिर इसी तरह वक़्फ़ुलमुहसनातिल मोमिनातिल गाफिलात, सीधी सादी भोली भाली औरतों पे तोहमत लगाना, ऐसे ही फलां लड़की ख़राब है, उसका उधर ताल्लुक़ है उससे, दिस एंड दैट, यानी जस्ट लाइक किसी को इस तरह से नाम करना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टॉप मोस्ट थिंग इज़ शिर्क। अगली रिवायत है मुस्नद अहमद में, हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे वसीयत की, वसीयत समझते हैं यानी जैसे एक अच्छी एडवाइस की, क्या, ला तुशरिक बिल्लाही शैया, ए माज अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, ख्वा तुझे कत्ल किया जाए या जला दिया जाए, वाइन कुतिलता औ हुरिकता। इतनी बड़ी बात है, बाकी बातों को तो दूर कीजिए। इस मौजू पे अगर आप ज़्यादा सुनना चाहें तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह इसी सीरीज़ की पहली किताब किताब तौहीद के नाम पे मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट पे भी है, आप लोग उसको भी सुनना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बाकी चीज़ें भी सारी ठीक हो जाती हैं। अल्लाह के नबी के अपने अमल से हमें ये सारी चीज़ें भी दिखती हैं, सहाबा कराम का अमल भी ये सारा कुछ दिखता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम मज़ीद सुनने की बजाय अब चलते हैं अपने इस मौजू पे, मैं चाहूँगी कि इतनी जो बात हुई जिसमें हमने शिर्क का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लिया, आप कुछ कहना चाहें।
मुझे आपसे पूछना था कि जब हम दुआएं मांगते हैं और हम किसी का गिला लेते हैं, जैसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या किसी बुजुर्ग का, तो ये ठीक है, ये कर सकते हैं हम?
जी, इनका सवाल बहुत अहम है क्योंकि आज इन्होंने शिर्क के बारे में इतना कुछ सुना तो इनके दिल में सवाल आया कि दुआ में बाज़ दफ़ा कुछ बुज़ुर्गों के वसीले लिए जाते हैं तो क्या ये नहीं है। पहले तो मैं आपको इसके बारे में फिर दावत दूंगी कि इसी सीरीज़ की एक बुक किताबु दुआ है, इतनी खूबसूरत बुक है वो। मैंने इस सीरीज़ को माशाल्लाह काफ़ी बुक्स पढ़ाई हैं लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय किताबु दुआ पढ़ाते हुए किया। आप ज़रूर सुनिए, उसकी भी ऑडियोज़ वेबसाइट पे मौजूद है। उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स बना के बात की गई है तो उसमें दुआ और वसीला देखिए पहली चीज़ है। लेकिन इन शॉर्ट, चूँकि आपने सवाल किया और आपका हक है, तो देखेंगे कि क्या नबियों ने दुआएँ मांगी। सबसे पहले तो हमारे लिए रोल मॉडल नबी सल्लम है ना। आप मसनून दुआएँ देखें, मेरे पास एक बुक है उसमें 61 दुआएं हैं जो नबी सल्लम से साबित हैं। नबी सल्लम की 700 दुआएं हमें हदीसों से मिलती हैं। अगर आप सारी हदीस की किताबें उठा लें और उसमें किताबु दुआ खोल लें तो ऑलमोस्ट 700 दुआएं मिलती हैं। किसी एक दुआ में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा, इवन उस दौर में तो प्रॉफिट्स थे, कि अल्लाह मैं तुझे इब्राहिम के वसीले से, नूह के वसीले से, आदम के वसीले से, ईसा के वसीले से मांगता हूँ। आप देखिए अमूमन दुआएं क्या होती हैं, रब्बी ओ माई लॉर्ड, या रब्बुना ओ आवर लॉर्ड, या दुआएं होती हैं अल्लाहुम्मा ओ अल्लाह। ठीक है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। और अगर नबी सल्लम के बाद आप बाकी नबियों को देख ले, एक दुआ तो आप सबको आती होगी जो पहले ही नबी की दुआ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, चलिए इंसानियत का आगाज़ था ना, फर्स्ट मैन ऑन दिस अर्थ, जब उनसे गलती हुई शैतान के धोखे में आकर उन्होंने जन्नत का दरख्त चखा, फिर एहसास हुआ, जन्नत का लिबास उतरा, तो क्या कहा? सूरह अल अराफ के बिल्कुल शुरू के आप दूसरे रुकू में इस दुआ को पढ़ेंगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना ओ आवर लॉर्ड। ठीक है, आप देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी, उनका बेटा जो था वो नाफरमान था, अपनी कौम के लिए दुआ मांगी। सूरत नूह 29वें पारे में पढ़ लीजिए, बहुत सारी दुआएं हज़रत नूह की, रब्बी ला तज़र्फ, यानी ए रब ना छोड़े इस ज़मीन पे काफ़रों का कोई घर। फिर आप देखिए मारूफ नबियों में उसके बाद हज़रत इब्राहिम का नाम है, हज़रत इब्राहिम की बहुत सारी दुआएं कुरान में मौजूद हैं। मारूफ दुआ जो उन्होंने औलाद मांगी थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन ओ माई लॉर्ड प्लीज़ ब्लेस मी विद अ चाइल्ड। ठीक है, फिर आप देखिए कि उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांगी, पहले पारे के बिल्कुल लास्ट अगर आप 2-3 रुकू देखें तो हज़रत इब्राहिम की सारी दुआएं, रब्बी जाल मुकीम असलात व मिन ज़ुर्रियती, ये दुआएं मौजूद है ना। तो क्या पता चला कि उन्होंने भी नहीं कहा, इवन उन्होंने ये भी किसी ने नहीं कहा कि रब्बे मोहम्मद, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि सब नबियों के बाद नबी सल्लम आए हैं लेकिन उनको पता था कि ये नबी आएंगे। पूरा कुरान खोल के देख लीजिए नबियों की सब दुआएं ओ माई लॉर्ड, और इसी तरह मसनून दुआएं। आप अपनी नेचर से, तबीयत से देखिए, आप और मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं कि इनडायरेक्ट? आपको अपने हस्बैंड से कोई काम है क्या, आप खुद तरीके से उनसे बात करके वो बात मनवा सकती हैं, या आप अपने समझें कि भाई के बेटे या भाई को कहती हैं तुम इनसे कहो? देखिए जब अपना ताल्लुक बिगड़ा होता है तो फिर हम दूसरों को डाल देते हैं क्योंकि मेरी नहीं सुनेंगे तुम्हारी सुनेंगे, लेकिन जब अच्छे दिन होते हैं, अच्छे हालात होते हैं तो उस वक्त क्या होता है। तो बस आखिरी बात ये कह देती हूँ इस सवाल के जवाब में, जिनका अपना ताल्लुक अल्लाह से अच्छा होता है ना, वो तो कहते हो माई लॉर्ड। इवन गुनाह करके आए आप, आपसे गुनाह हो गया, आपने गलत काम कर दिया नफ्स के कहने में, फिर भी फौरन जाइए प्लीज रब्बिग़फिरली वली वाली और प्लीज अल्लाह फॉरगिव मी। आपको बच्चा कितना प्यारा लगता है जो बच्चा गलत काम करके आके अम्मी से लिपट जाए, अम्मी प्लीज फॉरगिव मी, अम्मी प्लीज आई डिड दिस दिस दिस। तो अल्लाह को उन बंदों पर बहुत प्यार आता है जो गलत काम करके अल्लाह से मांगते हैं। ठीक है,